मेरे जुझारू युवा साथियों नमस्कार। मित्रों, आज 12 मई 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस CFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं, आज भी दे रहा हूं। और सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपको जो प्रेस की क्लिपिंग्स हैं वे कल यानी कि शनिवार को एज इट इज मिलती रहेंगी, जैसे कि आज मिल रही हैं। बल्कि आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेंगी कल, और उसमें होगी योजना के 2 आर्टिकल और साथ ही कुरुक्षेत्र पत्रिका के 2 आर्टिकल, यानी कि योजना का हिंदी इंग्लिश प्लस कुरुक्षेत्र का हिंदी इंग्लिश। और साथ ही मित्रों, इसके एक आपको वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो सिविल सर्विस के पैटर्न पर होता है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, और हमारे जो 5th और 6th बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ सूचनाएं। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, आपने न्यूज एनालिसिस के से पहले, इसको सुनने से पहले मुझे विश्वास है कि रेडियो न्यूज जरूर सुना होगा, और आप लोग पूरी कोशिश करते होंगे कि दूरदर्शन का भी न्यूज आप सुन सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे इस रिक्वेस्ट पर फिर से एक बार ध्यान दें कि प्लीज दूरदर्शन की न्यूज सुनने के लिए वक्त निकालें। उसका कारण यह है कि दूरदर्शन पर हर न्यूज में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उस पर जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। देखिए, जो सिविल सर्विस का पैटर्न है आप जानते हैं वो एनालिटिकल है, स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होते हैं जैसे कि जनरली स्टेट सिविल सर्विस में आ जाते हैं, आते ही हैं। अब सवाल यह है कि आप ये एनालिसिस लाएंगे कहां से। मैं ये मान करके चलता हूं दोस्तों कि आप जिस उम्र में हैं, अभी अभी आप कॉलेज की एजुकेशन पूरी करके और कॉम्पिटिशन के मैदान में कूदे हैं, उस लेवल की एनालिटिकल पावर डेवलप हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह भी है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो यह आपके लिए चुनौती है कि फिर करें क्या। एक उस चुनौती का बहुत अच्छा समाधान जो हो सकता है वो दूरदर्शन न्यूज, उसमें एक टॉपिक पर पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, उससे आपको तथ्य मिलते हैं, और साथ ही साथ जो कुछ बहुत अच्छे डिबेट्स अगर आपको किसी चैनल पर मिल जाते हैं तो वे भी आपके काम के होते हैं। खासकर NDTV में मैंने देखा है कि 9 बजे जो डिबेट आता है वो अच्छे इश्यूज को उठाते हैं, और डिबेट भी काफी ठीक ठाक रहते हैं, जो कि इश्यूज अच्छा होता है। जैसे अभी वो 3 तलाक के इश्यू को उठा करके चल रहे हैं NDTV, कल के भी आपने DD News में देखा होगा 3 तलाक के मामले को ही लेकर बात की जा रही थी, उसमें एक एक्सपर्ट बुलाए गए थे जो खासकर जो मुस्लिम कानून के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और जो संविधान के और कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे बातचीत की गई, कुछ और लोगों से बातचीत की गई। तो इससे आपको कंटेंट मिलता है, आपको उस समय नहीं लगता है कि इससे हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना उस पैटर्न पर ढलनी शुरू हो जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मित्रों, वो जरूर सुने। दूरदर्शन न्यूज में 3 तलाक पर बातचीत की गई, और आपके रेडियो न्यूज में भी आपने 3 तलाक पर सुना कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है, उसके संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है, और 7-5 दिनों में ही इस सुनवाई को पूरा करने के बाद फिर कोर्ट अपना जजमेंट जो भी देना होगा वो देगी। मतलब एक बहुत बड़े विवाद का शायद अंत इससे हो जाए, अगर फिर से वह उनका कोर्ट का यह निर्णय विवादास्पद नहीं हुआ तो। लेकिन फिर भी कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे, याद रखिए उसका एक जबरदस्त सामाजिक प्रभाव तो होगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरदर्शन न्यूज में भी ये बात बताई गई थी, और बहुत कई बार ये बात बताई गई, और रेडियो न्यूज में भी ये बात स्पष्ट की गई कि संविधान ने बिल्कुल प्वाइंट दे रखे हैं कि वो किन मामलों पर विचार करेगी, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान ये नहीं है कि जो कोर्ट है वो किन मामलों पर विचार करेगी। तो ये नहीं है कि कोर्ट किसी भी चीज को लेकर के बातचीत कर रही है, उसने बकायदे उसके पॉइंट ले डाउन किए हुए। पहला तो वो ये देखेगी कि ये जो विवाह का मामला है ये मूल अधिकार है कि नहीं है। फिर उन्होंने सीधे सीधे देखा, वो ये भी देखेगी कि ये जो तलाक वाला जो मामला है 3 तलाक का, ये इस्लामिक धर्म का अंग है या नहीं है, या इसको ऐसे ही एस्टेब्लिश कर दिया गया है, मूल रूप में ये है कि नहीं है। और अगर आपने न्यूज पे ध्यान से सुना हो तो उसमें बताया गया कि हमारे अब्बास नकवी जी का एक इंटरव्यू भी आने वाला है और उसमें उनकी वॉयस भी थी, आवाज भी थी कि बेसिकली ये जो तीन तलाक का मामला, ये धर्म का मामला ही नहीं है। वो कहते हैं ये सामाजिक मामला है, ये एक सामाजिक बुराई है और ये बहुत अच्छी बात है कि अब मुस्लिम समाज इस पर एक सकारात्मक तरीके से सोच रहा है। तो ये एक सामाजिक मामला है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है वो ये देख रहा है कि ये धर्म का हिस्सा है या नहीं है। और इसके बाद जो तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत से देशों ने तीन तलाक के मामले को खत्म कर दिया, लगभग 20-22 देश हैं जिन्होंने खत्म कर दिया है और वो भी इस्लामिक देश है, वो भी कुरान को ही लेकर चलते हैं, उनका भी जो धर्म ग्रंथ है वो कुरान है। तो सवाल यह है कि वो जो जिन देशों ने इसको खत्म किया है उनने किन आधार पर खत्म किया, क्योंकि अगर कुरान में होता धर्म का अनिवार्य अंतर्निहित अंग होता तो बड़ी दिक्कत होती उसको खत्म करने में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन तीन बिंदुओं पर मूलभूत रूप से विचार करेगा। तो अब आप देखिए कि अगर आप न्यूज सुन लेते हैं, रेडियो न्यूज सुन लेते हैं, तो आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाती है, क्योंकि आप जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन बनेंगे आप देखेंगे इन तीन आधारभूत तत्वों के आधार पर ही बनेंगे। अदरवाइज तो बहस चल रही है, चलती रहेगी, 5 दिन तक अखबारों में भी खूब सारा आता रहेगा, खूब आर्टिकल्स भी अभी लिखे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ की 15% आबादी मुस्लिम है और उसमें आप सोचिए कि उसकी आधी आबादी तो महिलाओं की है, एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम महिलाओं की है जो इसके खिलाफ बोल रही है और इससे प्रभावित हो रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। तो मित्रों इससे क्या होता है कि आपको एक मेड़ मिल जाती है, सीमाएं मर्यादाएं मिल जाती हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो भारत श्रीलंका को लेकर है, उसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी और मैं नहीं समझता कि अभी हम इस स्थिति में है कि भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में बात करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के श्रीलंका प्रवास का 2nd और लास्ट डे है, देखते हैं उनके दौरा पूरा होने के बाद क्या बातें निकल कर आती हैं, अखबारों में क्या चीजें होती हैं, तब फिर हम इस इश्यू पर बात करेंगे। एक तथ्य तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो भारत श्रीलंका के जो संबंध हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों न्यूज में और कुछ खास नहीं था, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर। दोस्तों न्यूज़पेपर्स की जो क्लिपिंग्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। कल मैं न्यायालय के बारे में बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और खासकर महाभियोग इम्पीचमेंट के संदर्भ में। इम्पीचमेंट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्या इसका कोई आधार है, करंट कोई बेस है, या मैं अपनी तरफ से मैंने ये चुन लिया है? नहीं मित्रों, ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से करंट पर बेस्ड है। तो भले ही मैं सब्जेक्ट की ही कोई बात करूंगा लेकिन उसका जो आधार होगा वो करेंट ही होगा। और बुक्स से भी जो पूछे जाते हैं, जो थ्योरी जैसे हमें दिखाई देते हैं, अब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं उनकी भी लिंकिंग इसी तरीके से होती है। हम सीधे सीधे उसको नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन वो जुड़े हुए कहीं ना कहीं वो करेंट से ही होते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने एक अखबार में ये सवाल उठाते हुए पढ़ा था, उसने सवाल उठाया था कि जो जस्टिस कर्णन है जिनको अभी 6 माह की सजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यही उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो सजा दे सकता है, क्योंकि सजा देने का मतलब है देखिए पद से एक तरीके से हटाया जाना है। फिर उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये अधिकार तो संसद का है, संसद ही उन्हें महाभियोग के जरिए हटा सकती है, तो ये संसद के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में कैसे ले लिया, ये उन्होंने प्रश्न उठाया था। तो मित्रों हमारे सामने अब इस इश्यू को लेकर के जो जस्टिस कर्णन का इश्यू है, इसमें हमारे सामने 2 प्रश्न उठते हैं जुडिशरी के मामले को लेकर। देखिए अभी तक हम न्यायिक सक्रियता, ओवररीच और को गवर्नेंस की बात करते रहे हैं, लेकिन अब एक और भी पैरेलल सवाल उठ रहा है। वो सवाल यह है कि पहली बात महाभियोग की बात है, हमें जान लेना चाहिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो महाभियोग को अच्छे तरीके से देख ले, प्री के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी। हाँ इस बार के प्री के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि शायद उतना महत्वपूर्ण न हो, क्योंकि हम अब बिल्कुल मई में हैं, 18 जून को एग्जाम है, तो पेपर तो जो बनने चाहिए थे वो बन चुके होंगे, तो इस बार भले ही न पूछा जाए, लेकिन और दूसरे एग्जाम भी हैं, ये नहीं कि केवल सिविल सर्विस है। मुझे मालूम है कि जो मेरे प्रिय श्रोता हैं वो दूसरे एग्जामिनेशन में भी बैठते रहते हैं, उन्हें बैठना ही चाहिए, तो उस दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछे जा सकते हैं। मेंस के लिए जो अक्टूबर में ही सिविल सर्विस का होना है उसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने को लगातार सतर्क रखना होगा और वहां से टॉपिक चुनने होंगे। इसलिए मित्रों मैंने महाभियोग वाला टॉपिक चुना, पहली बात। दूसरी बात, महाभियोग तो एक टॉपिक हो गया, दूसरा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इस तरह से जस्टिस को, अपने ही जस्टिस को हटा सके, चाहे वो हाईकोर्ट के ही क्यों ना हो, ये एक फिर से सवाल उठता है। तो मित्रों मैं शुरुआत दूसरे प्रश्न के उत्तर से करूंगा क्योंकि उसका उत्तर थोड़ा सा छोटा है, फिर हम आएंगे आपके महाभियोग वाले उत्तर पर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने जस्टिस को इस तरीके से हटा सकती है या नहीं हटा सकती है, इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया आर्टिकल है और इससे आपको यह भी पता लगेगा कि कोई आर्टिकल कब खूबसूरत हो जाता है। और खूबसूरत शायद इसलिए है क्योंकि इसे जो लिखने वाले हैं वो हमारे फॉर्मर जस्टिस रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका नाम है पलोक बसु। ये कल के दैनिक हिंदुस्तान में उनका आर्टिकल छपा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उसी में जो उन्होंने मूल बात कही है उधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने ये माना है कि हाँ यस, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने न्यायाधीश को सजा दे सके, लेकिन आप इन चीजों को पूरी तरह से कह कब सकते हैं? अगर मैं सिर्फ यही लिख देता हूं एग्जामिनेशन में कि हां उसको यह अधिकार है, तो मैंने कहा तो सच है लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य होने के बाद भी मैं अपनी बात को लॉजिकल तरीके से नहीं कह पा रहा हूं। मित्रों ये एक अच्छा उत्तर लिखने का एक तरीका है। आप लोग कहते हैं लिखा कैसे जाना चाहिए, अच्छे उत्तर किसको कहते हैं, अच्छे मार्क्स किस में मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। सीधे सीधे कह देना कि हाँ उसे अधिकार है, एक बात हुई। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि किसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि हाँ उनको ये अधिकार है, तब फिर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है, एकदम भिन्न हो जाती है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों कि जब मैं अपनी बात कहूं तो उसके साथ ही साथ मैं कोट करूं। लेकिन आप सवाल ये भी है कि आप कोट करेंगे कहां से, कितनों को कोट करेंगे? यहां पर फिर एक तैयारी करने के तरीके का प्रश्न आ जाता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं उस तैयारी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए उसका चयन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, चयन करने की शक्ति। और सच पूछे तो मुझे इस बात का बेहद आत्मसंतोष है दोस्तों। आप चाहे तो मू मिया मिट्ठू बनना कह सकते हैं कि इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं लगभग उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने में सफल रहा हूं अभी तक जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्री में पूछे जाते हों, चाहे वो मेंस में पूछे जाते हों, चाहे वो इंटरव्यू में ही क्यों ना पूछे जाते हों। यानी कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इसको समझने और जानने में और आगे के लिए आपके अंदर इसकी क्षमता पैदा करने में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह डेली ऑडियो लेक्चर आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एकमात्र है, नॉट एट ऑल, दूसरे और भी बहुत उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उन सभी उपकरणों में यह भी एक टेस्टेड उपकरण है। तो अब आप देखें कि मैंने ये बता दिया कि नहीं आप ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अलर्ट हो गए, अब अखबारों में जो लिखा जाएगा इस पर आप नोट करते जाएंगे, इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर आप फोकस कर देंगे और जब क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा तो आपका जो उत्तर होगा वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे और यही सिलेक्शन है। तो मित्रों इसके बारे में मैं आपको संविधान के एक अनुच्छेद की चर्चा कर रहा हूं जो पलोक बसु जी ने अपने आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, और यह है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। मैं फ्रेंड्स आप लोगों की सुविधा के लिए इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। न्यायालय की अवमानना, और आपको मालूम है कि जस्टिस कर्णन को जो सजा दी गई है वो न्यायालय की अवमानना करने के लिए ही दी गई है, जिसमें संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। हाँ, यदि उनको अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाने, कदाचार उनके व्यवहार या उनके करप्शन की खबरें अगर होती तो डेफिनेटली फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ये जो अनुच्छेद 129 है इस पर लागू नहीं होता, फिर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती और तभी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता था या किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता। तो मित्रों, एक तथ्य जो बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है मैंने आपके सामने यहां रखा है, और चूंकि अब वक्त नहीं रह गया है इसीलिए अब मैं महाभियोग की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और वैसे भी महाभियोग पर किताबों में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बहुत समझा करके लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से भी बड़े आराम से उसे पढ़कर समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, जहां तक अब मैं पेपर क्लिपिंग्स का सवाल है, मैंने कहा कि मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, कुछ अच्छी क्लिपिंग्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, मैं इसमें एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे एक मित्र ने ईमेल से मुझे स्मरण कराया है कि मैं बोलते समय वायदा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने कहा है कि सर, जो वायदा है वो गलत है, वो वादा शब्द है। दरअसल जो वायदा शब्द है वो आर्थिक शब्दावली का शब्द है, वायदा बाजार करते हैं ना। मैंने फिर डिक्शनरी में जाकर के उर्दू की डिक्शनरी में देखा, ओरिजिनल जो उर्दू का शब्द है वो तो वाद है, वाद करके दो बिंदी है, लेकिन ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। वायदा कारोबार का मतलब भी वही होता है कि अभी प्रेजेंट नहीं, भविष्य के कारोबार के लिए वादा करना, और जो वादा किया जाता है वो भी भविष्य के लिए किया जाता है, मतलब प्रॉमिस किया जाता है। तो मैंने सोचा कि वो अगर डेली ऑडियो सुन रहे होंगे तो जरा वो थोड़ा सा चेक कर लें कि कहां से उन्होंने इसके अंतर को निकाला है। नो डाउट कि वायदा कारोबार शब्द खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल आर्थिक शब्दावली ही है और उसका प्रयोग दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, मैं अब कुछ अन्य मित्र दोस्तों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। वो है किशन मेवाड़ा पालिताना गुजरात से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, विनोद यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश से, संकेत श्रीवास्तव, मनीषा पाल, प्रशांत सहरावत, अनमोल मौर्य, अर्चना उपाध्याय अमेठी उत्तर प्रदेश से, और दर्पण भारद्वाज। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब दो दिन का आपके पास अवकाश है, इस अवकाश का भरपूर उपयोग करें और इसका भरपूर आनंद भी उठाएं। मेरी शुभकामनाएं, मेरे टीम की शुभकामनाएं, मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब दो दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।